सौम्या की चीख सुन संधू सौम्या कहते उसकी ओर देखती है, पर वो सौम्या से कुछ और बोलती कि सौम्या अक्षित चिल्लाते हुए अक्षित की तरफ दौड़ पड़ी। तभी संधू की नज़र भी अक्षित पर पड़ी, जो वहां से थोड़ी दूरी पर औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था, वो भी खून से लतपत। संधु भी अक्षु चिल्लाई और सौम्या के पीछे अक्षित की ओर भागी। अक्षित के पास आते ही सौम्या ने अक्षित को संभालते हुए अपनी तरफ पलटा। अक्षित को काफी चोट आई हुई थी, उसके सिर से खून बह रहा था। सौम्या अक्षित कहते अक्षित का सिर अपनी गोद में रखती है। इतने में संधु भी वहां आ गई और अक्षित के गाल पर हाथ रखते हुए, अक्षु अक्षु क्या हुआ है तुम्हें, अक्षु क्या हुआ इसे, इतनी चोट कैसे आई तुम्हें अक्षु। सौम्या अक्षित को हिलाते हुए, अक्षित अक्षित उठो ना, अक्षित आंखें खोलो। दोनों के बोलने हिलाने पर भी अक्षित ने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि वो बेहोश था। अक्षित की ऐसी हालत देख दोनों डर गई और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सौम्या संधु से, दी अक्षित की कंडीशन ठीक नहीं है, देखिए कितनी चोट आई है इसे, कितना ब्लड निकल रहा है, दी ये होश में नहीं है, हमें अक्षित को अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। दी संधु अक्षित की चोट की ओर देखते, हाँ सौम्या हमें अक्षु को जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, पता नहीं कैसे आई इसे इतनी चोट, क्या हुआ है इसे। अक्षु सिर सहलाते हुए, तभी सौम्या बोल पड़ी, दी जीजू को बुलाइए, जल्दी जाइए। दी जाती हूँ, कह संधु अक्षित की ओर देखते वहां से उठी और वहां से भागते हुए, मैं अभी वीर कमल को बुलाकर लाती हूँ, तुम ध्यान रखना अक्षु का, भाई अभी आई मैं। भागते मुड़कर बार बार अक्षित को देखने में संधु गिर पड़ी। आह सौम्या, दी अक्षित सौम्या की ओर देख नीचे से उठते हुए, मैं ठीक हूँ अभी बुलाकर लाई, कहते वीर को आवाज देते संधु वहां से भागते हुए चली गई। सौम्या अक्षित का चेहरा हाथों में भरते हुए बहते आंसुओं के साथ, अक्षित अक्षित उठो ना, कैसे लगी तुमको चोट, बताओ ना, देखो ना अक्षित कितनी लगी है तुमको, दर्द हो रहा है ना तुम्हें, अफकोर्स हो रहा है, कितना ब्लड निकल रहा है, सिर के नीचे से अपना हाथ निकाल देखते हुए, अक्षित आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अभी हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे अक्षित, अक्षित मुझसे बात करो ना, कुछ तो बोलो, गाल पर हाथ रखते हुए, प्लीज अक्षित हम नहीं डांटेंगे तुमको, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, सुन रहे हो ना तुम, अक्षित नहीं देखा जा रहा तुम्हें ऐसे, अक्षित, बोलते सौम्या रो पड़ी और अक्षित को खुद से चिपका लिया और उसका सिर चूमते हुए, अक्षित सुनो ना, ऐसे चुप अच्छे नहीं लग रहे तुम मुझे करेली कह लो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी अक्षित, अक्षित कुछ तो कहो, मेरी तरफ देखो ना, आंखें तो खोलो अक्षित। कि तभी वीर कमल नैना संधु वहां भागे आ गए और एक साथ बोले, अक्षित अक्षु। सौम्या ने खुद को संभाला और उनकी ओर देखते, गाइस जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, सबने हाँ कहा और अक्षित को वहां से उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले आए। अक्षित स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, सब उसकी ओर देखते डॉक्टर को आवाज देते हैं, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर जल्दी आइए डॉक्टर। तभी डॉक्टर नर्स और वार्ड बॉय के साथ वहां भागा आया, उसने सबको साइड कर अक्षित को चेक किया और वार्ड बॉयज और नर्स से बोला, जल्दी पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो, जल्दी। जी डॉक्टर, वार्ड बॉय और नर्स बोले और अक्षित को उसी वक्त जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सौम्या संधु भी अंदर जाने लगी तो डॉक्टर ने उन्हें रोक दिया, आप बाहर रुकिए, और डोर बंद कर अक्षित के पास चले गए। अक्षित को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने चेक किया तो अक्षित की हार्टबीट काफी तेज चल रही थी, इतनी तेज मतलब कि अक्षित का दिल सही तरह से नहीं धड़क रहा था। अक्षित की जान खतरे में थी, वजह खून भी बहुत बह चुका था, सिर के हाथ के पैर के बहुत चोट भी आई हुई थी, बेहोश था अक्षित न जाने कब से। अंदर अक्षित का ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर सब अक्षित की चिंता में खड़े थे। सौम्या की नज़र इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर ही टिकी थी, वो दीवार से सटकर यूं खड़ी थी, उस ओर नजरें गड़ाए मानो उसे अक्षित के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार हो, अक्षित आए तो उसकी जान में जान आए। अंदर डॉक्टर अक्षित का ट्रीटमेंट कर रहे थे और बाहर खड़ी सौम्या पर उस पल क्या बीत रही थी ये वहीं जानती थी, वो अक्षित के जल्द ठीक होने की मन ही मन प्रे कर रही थी। वहीं संधु वीर की बांह पकड़े सुबकियां भर रही थी, जिसे वीर संभाल रहा था और साथ साथ अक्षित के परेशान भी हो रहा था और सोच रहा था कि क्या हुआ होगा उसके साथ। वहीं कमल नैना को भी अक्षित की बहुत फिक्र हो रही थी, सबके मन में सेम ही बातें चल रही थी, अक्षित ठीक हो जाए जल्दी से और उसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ कैसे। दिल्ली एयरपोर्ट, अक्षित हम बिन बताए घर से चले आए, मतलब हम मुंबई जा रहे हैं ये बात हमने किसी को नहीं बताई, मॉम डैड को भी नहीं, संध्या अक्षित से बोली। क्या बताते संध्या, हमें खुद नहीं मालूम, और हम सबको जगाकर कहते कि हम मुंबई जा रहे हैं तो सब हमसे सवाल नहीं करते क्या, क्या जवाब देते हम फिर उनको, इसीलिए सबके उठने से पहले और बिन बताए ही मुंबई जाना ही मुझे सही लगा। एंड डोंट वरी, मैंने डैड को मैसेज कर दिया है कि हम अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे घर पर ना होने से वो परेशान नहीं होंगे। सही कह रहे हो तुम अक्षित, बताकर आते तो सब परेशान भी हो जाते, और आक्षी वो भी जिद करती साथ आने की, सही किया तुमने जो डैड को मैसेज कर दिया, सब रिलैक्स रहेंगे। हाँ और संध्या, हमारा अभी मुंबई जाना जरूरी है, हमारे अक्षु हमारे बेटे के पास, ना कि यहाँ रुककर टाइम वेस्ट करना, अक्षित अक्षु के बारे में सोचते हुए बोला। तो संध्या उसकी बांह पर हाथ रखते हुए, जा रहे हैं ना हम मुंबई, हमारे अक्षु के पास। अच्छा अक्षित, एक बार वीर को कॉल, संध्या ने ये कहा कि अक्षित के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ गुस्से वाले एक्सप्रेशन भी चले आए। क्या चाहती हो, मैं उनसे फिर झूठ सुनूं? पहले ही उन्होंने हमें झूठ कहा है संध्या, अब नहीं, अब मुंबई जाकर ही बात करूंगा मैं उनसे। ये सुन संध्या ने अक्षित को कुछ न कहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो इस वक्त गुस्से में था और अक्षु के लिए परेशान भी। और सच ही था ये कि वीर ने उनको झूठ बोला, चाहे फिर उसके पीछे वजह रही हो उनको परेशान न करने की। संध्या मन ही मन, तुम भी जानते हो अक्षित और मैं भी, हमारे बच्चे हमसे झूठ नहीं कहते, और कहते हैं तो रीजन होता है। हमारा अक्षु मुसीबत में है, इस बात से हम परेशान हैं, तो वो सब भी होंगे। हम ही नहीं, सब हमारे अक्षु को प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, ये बात तुम भी अच्छे से समझते हो। तभी अक्षित संध्या का हाथ पकड़ते हुए, चलो फ्लाइट का टाइम हो गया, और दोनों फ्लाइट में बैठ दिल्ली से मुंबई निकल गए क्रमशः।